कावे बता रहा था कि उसने आज दोपहर को तुमसे फोन पर बात की। वो तुम्हारी मर्जी से मेरे पास आया था कि तुमसे शादी की दरख्वास्त करे। क्या ये सही है?
उस रात लॉन में आपने खुद मुझसे कहा कि मेरी चाहत से आप मुवाफिक हैं। मां हमेशा कहा करती थी कि
नहीं बेटी, मां के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी मां अभी मनोमिट्टी के अंदर दबी पड़ी है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या पूछा। मैंने किसी रात के बारे में नहीं पूछा, आज दोपहर के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कहा, कावे ने बोला कि आज दोपहर को उसने तुमसे रابطہ कायम किया और वो तुम्हारी मर्जी से मेरे पास शादी की बात करने आया था। क्या ये सही है?
डैड, मैं कोई भी जवाब देने से पहले आपको इतना बताना चाहती हूं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं,
मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मगर पहले मेरी बात का जवाब दो। कावे ने क्या आज दोपहर को तुमसे राबता कायम किया और तुम्हारी इजाजत और मर्जी से मेरे पास आया?
मेरी मर्जी से आया था।
जनाब, क्या आपका मोबाइल शोबाइल बंद है? जनाब, वाह वाह, देखो मेरे भाई, तुम्हारे लिए मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली है। एक औरत के घर में वो रहती है जिसका नाम कंबर है, दो दूसरी लड़कियों के साथ। उनमें से एक के पास रेनू गाड़ी है। उस घर में एक के वालिद की फातिया खानी में उसके भाई से मैंने बात की है, उसी रेनू गाड़ी वाले के भाई से। उसके यहाँ खाना भी मैंने खाया। हाँ, अर्ज है, उस लड़की के भाई का नाम मोहसिन है। उसे दो नंबर का पैसा कमाने से एतराज भी नहीं है। हाँ, ये बात बताइए, शायद तुम्हारे काम आए। ये बात तुम्हारे काम आई?
आपके शौहर की हालत मुतगैर है मोहतरमा, अगर उनकी हयाती गिनती उससे ज्यादा गिर गई फिर हालात हमारे इख्तियार में नहीं होंगे। अब तक दिल की हरकत की एक रुकावट दूर हुई है। देखिए मोहतरमा, मैं अभी आपके सामने कुछ फनी और तिब्बी वजाहतें पेश कर सकता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुमकिन है कि आप कुछ भी ना समझ पाए, बल्कि आपकी तशवीश का बाइस भी बन जाए, लेकिन मैं बहुत ही आसान और सादा जबान में आपके लिए वाजे करना चाहूंगा। आपके शौहर कोमा में है, यहां तक कि दर्द पर भी रद्द अमल जाहिर नहीं कर सकते। जब से उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है, ना बेहतरी आई है और ना ज्यादा बिगड़ी है। अलबत्ता सारी बातें बुरी नहीं है, और खुशी की बात यह है कि वो अपनी असली हालत में सांस ले रहे हैं, उन्हें सांस लेने के लिए मशीन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हालत इस मरहले तक पहुंच जाए, जो कि वईद भी नहीं है कि पहुंच जाए, मेडिकल साइंस के तहत उनकी हयात और जिंदगी की तरफ वापसी बहुत कम है। देखिए मोहतरमा, हम सभी का एक अकीदा है, कम या ज्यादा यह अकीदा हमें उम्मीद की तरफ ले जाता है, खुदा से उम्मीद। मेरा मतलब समझ रही है ना?
मैं चाहती हूं कम से कम एक घंटा अपने शौहर के साथ रहूं, उनके बिस्तर के पास कुर्सी लगाकर बैठूं, बातें करूं, दुआ पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, बालों में कंघा करूं, नाखून काटूं। आप कह दें कि मुझे ये इजाजत दी जाए,
मगर अस्पताल का कानून।
डॉक्टर साहब, हमने कानून को जुबान दी है कि सिर्फ बोले, कान नहीं दिए हैं कि सुन सके। उसमें उस औरत के इस्तराब को सुनने की सलाहियत नहीं जिसका शौहर बिस्तर पर पड़ा हो, जिसके पीठ पीछे हजारों बातें कही जा रही हैं, यहां तक कि बकौल आपके वो कोमा में है और दर्द होने पर भी रद्देअमल जाहिर नहीं कर पा रहा है। हमने कानून को कान नहीं दिए हैं कि वो सुन सके, क्योंकि अहमद रजा की चाहत खुजस्ता के दिल में है इसलिए मुतमईन है, क्योंकि खुजस्ता का दिल अहमद रजा के पास है इसलिए खुश है, इसलिए ये मौका मुझसे ना छीने। डॉक्टर, ये मौका मुझे दे दीजिए, बराए मेहरबानी मेरी ये दरख्वास्त अस्पताल के कानून तक पहुंचाए। क्या खबर है? मेरी बात मानो कि हमेशा ही से लापरवाह रहे हो, लापरवाह और जिद्दी, बात ना सुनने वाले, मगर मैं तुम्हें सारे उसूल सिखाऊंगी। पूरे दिन में सिर्फ एक घंटे का वक्त है, इसलिए अच्छे तरीके से प्रोग्राम बनाना होगा। तुम्हारी इन बिखरी और उलझी जुल्फों में कंघी करने से लेकर तौबा करने तक, मेरी बेहतरीन यादों से लेकर तुम्हारी बेहतरीन यादों तक, उन बुरे लम्हात को भी याद करेंगे जो हमने बिताए। मैं चाहती हूं कि इस घंटे के हर पल की कदर तुम्हें बताऊं। ऐ मेरे मुरझाए हुए हमदम, तुम्हें जिंदगी का सलीका सिखाऊंगी।
ध्यान लगाए रखना।
जी जनाब।
हेलो,
उस पोल्ट्री फार्म के मालिक से मैंने बात की है।
तकरीबन 3 महीनों से फर्जीन वहाँ काम कर रहा था। उससे पहले भी अपनी बहनों के पैदावारी यूनिट में काम करता था। अब उसका बहनोई कौन है?
पर्दा याकूत।
जी जनाब, पर्दा याकूत। ये दोनों कल रात से ही गायब हैं।
मैं फर्जीन की बहन के घर गया था, वहाँ से ये जानकारी हासिल की है। फर्जीन की बहन जो कि याकूत की बीवी है, 1 हफ्ता हो रहा है झगड़ा करके अपने बाप के घर आके बैठी हुई है। और सर अंजाम ये कि वो शादी हॉल जो पर्दा याकूत ने अपने भाई की शादी के लिए बुक किया था, वही इन दोनों मियां बीवी के झगड़े का बाइस हुआ है। मैंने पर्दा याकूत की बीवी के सामने 3 नाम लिए, अहमद रजा, शाइस्ता और कावे। वो इनमें से किसी को नहीं पहचानती।
दोनों की फोटो छपवा दो, फरजीन और पर्दा याकूत।
उस गाड़ी का ड्राइवर जिसने पोल्ट्री फार्म में आग लगती देखी थी अभी यहीं पर है। अभी आप कहाँ हैं?
जी जनाब, जब मैं वहां पहुंचा तो पोल्ट्री फार्म आग की लपटों में था।
आग! आग! आग!
पोल्ट्री फार्म तक पहुंचने में 200-300 मीटर का फासला था कि मेरी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। उसकी लाइट जल रही थी, दोनों दरवाजे भी खुले थे, मगर अंदर कोई नहीं था।
रुक कर देखा नहीं कि मामला क्या है?
मेरा ध्यान आग की तरफ चला गया, मैंने पोल्ट्री फार्म की तरफ गाड़ी बढ़ा दी।
वहां पहुंचे तो कौन मिला?
सिर्फ मैं था और आग थी।
फरजीन वहां नहीं था? उसका कहना है कि वहीं था और उसको आग देखकर ज़हनी झटका लगा।
नहीं, वो आग से दूर था, साफ मालूम चल रहा था कि वो सोया था। वो बस चिल्ला रहा था, अहमद रजा अंदर रह गया, अहमद रजा अंदर रह गया, फिर वो वहां से गायब हो गया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची तो फिर फरजीन दिखाई दिया।
हफ्ते में कितनी मरतबा वहां दाना लेकर जाते हो?
3 मरतबा, कभी दिन में तो कभी रात में।
पोल्ट्री फार्म के अंदर भी गए हो?
जी हाँ, तकरीबन हमेशा ही।
हालिया कुछ दिनों में वहाँ किसी अजनबी आदमी को नहीं देखा?
नया आदमी एक मर्तबा देखा है।
कौन था? उसका नाम?
नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता था। एक बैग था उसके पास, उस बैग की तरह जैसा डॉक्टर लोग रखते हैं।
उसका चेहरा कैसा था, कुछ याद है?
मेरे ख्याल में तकरीबन 50 बरस का था। नाक मोटी चिपटी थी, चमकदार आंखें, पतले होंठ, भवें सड़ी हुई नहीं थी, दुबला पतला था लकड़ी की तरह। वो सर से पांव तक सफेद कपड़ों में था। पहले मैंने कहा ना, डॉक्टर वाला बैग भी उसने उठा रखा था। बिल्कुल गंजा था, सफाचट, सर पर एक बाल भी नहीं था, गोल फ्रेम वाला चश्मा भी लगा रखा था उसने।
मैं कह रहा था कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए और मालिक मकान को अपने मकान की ज़रूरत है। मैंने सोचा आपको आपके नर्स के साथ भेज दूँ, मैं शायद 10 दिनों के लिए। इस दौरान मैं दूसरा मकान भी ढूंढ लूँगा और सामान भी उठवा लूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
हाँ, अच्छा सोचा है कि मुझको मामले से दूर करके खुद से और रोया के मामले से हटा दो। अच्छा सोचा है, हो मगर खराबी ये है कि मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं हिल सकती जब तक कि तुम्हारी सारी प्लानिंग जाहिर ना हो जाए।
नरगिस जान, ऊँट की सवारी तो घुटनों के बल नहीं की जा सकती। मैं देव की गर्दन तक पहुँच गया हूँ, अब उसकी आंखों तक पहुँचना बाकी है। परवेज की आंख उसकी बेटी है और किसी को मुझसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं ये मौका गंवा दूंगा, यहाँ तक कि आप भी, जिसके लिए मेरा दम अटका रहता है और आप ऐसा कुछ कर रही हैं। देखो नरगिस जान, वही है देव की आंख। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मशहद जाने के लिए उन्हें मनाओ।
उन्होंने कह दिया नहीं, उनका कहना है कि तुम उनको किसी चीज से दूर रखना चाहते हो और वो जानना चाहती हैं कि उन्हें क्यों दूर रखना चाहते हो। दर्द भी आप ही और दवा भी आप ही हो। कुरान की कसम वो इस सदमे में मर जाएंगी। ये खुजिस्ता खानम कहाँ है? क्या वो उन्हें इस हालत से बाहर नहीं निकाल सकती? कल वो उन्हें पूछ रही थी।
सुनो, तुम ये बताओ, तुम्हें इस काम की जरूरत है कि नहीं? तुमसे पूछ रहा हूं।
मेरी वजह से घर का खर्च चलता है, जाहिर है कि काम की जरूरत है।
क्या मैं बुरा आदमी हूँ?
नहीं।
क्या नरगिस जान तुमसे ज्यादा उम्मीद रखती है?
नहीं।
तुम्हारी तनख्वाह कम है? तो फिर अगर चाहती हो कि तुम्हारा काम बाकी है और तुम चाहती हो कि जहाँ काम कर रही हो वहीं रहो, तो फिर ये बात ध्यान से सुन लो कि नरगिस जान से कोई मिलने ना पाए। नरगिस जान भी किसी से ना मिले जब तक मैं ना चाहूँ तब तक। अगर इस घर में किसी ने कदम रखा तो मैं इसका जिम्मेदार तुम्हें समझूंगा। तुमको जिम्मेदार समझने का क्या मतलब हुआ? यानी ये कि हो सकता है कि तुम्हारा काम खतरे में पड़ जाए। ये नरगिस जान के फायदे में भी होगा, इसलिए ना खुजिस्ता खानम और ना ही कोई दूसरा इस घर में कदम न रख पाए, समझी?
जी।
हेलो, ठीक हो?
हाँ ठीक हूँ। ठीक हूँ क्योंकि मामले के मैदान में हूँ।
बीचों बीच हूँ।
मैदान के बीच में
कौन था?
जनाब समसामी।
सलाम।
सलाम।
तुम्हारे दिवालिया होने की दरख्वास्त मान ली गई है। परसों अदालत में सबको बुलाया जाएगा, तुमको भी मौजूद रहना होगा। रोया पर तुमने हाथ उठाया? तो यह काम भी कर ही डाला। नुकसान उठाओगे, गलती कर रहे हो। तुमने उसकी नजरों में काव्य को हीरो बना दिया, एक सफेद पोश शहजादा जो देव के चंगुल से उसे छुड़ा कर ले जाएगा। एक रोया की कद्र कीमत घट गई, एक झूठा ख्वाब, अब उसकी अहमियत खत्म ही हो गई। अपनी बेटी के दिमाग में तशद्दुद भर दिया। अपनी बेटी से बात करने और समझाने के बजाय अपनी बेटी को वजह बताने की जगह उस पर हाथ उठाया, उसके लिए घर को कैद खाना बना दिया। गलती कर रहे हो दोस्त, गलती। तुम्हारी आजादी के जमानती कागजात की मालिक को जरूरत है, अब इससे ज्यादा रोका नहीं जा सकता। अभी दूसरे जमानती कागजात की जरूरत पड़ेगी, उसकी सोचो, वरना जेल जाना पड़ेगा।
और तुम मदद नहीं करोगे?
तुम्हारी इसलिए मदद करूं कि जेल ना जाओ, या मदद करूं तुम्हारे हाथों को बांधने में ताकि अपनी बेटी पर फिर हाथ ना उठाओ?
मैं क्यों सारी दुनिया में लोगों से कर्ज ख्वाह हूं मगर तुम्हारा मकरूज हूं?
मैं नहीं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो, तुम खुद के कर्जदार हो और गले तक कर्ज में डूबे हो। बेवकूफी पर बेवकूफी, गलतियों पर गलतियां, अपनी जिंदगी को जलाकर खाक कर दिया और अब बेटी की बारी है जिसकी जिंदगी में आग लगाने जा रहे हो।
तुम जानते हो मेरी जान मेरे बच्चों में बसी है मगर वो नाफरमान बन गए, वो बाबक और अब ये रोया।
नाफरमान? तुम ये बताओ कि दुनिया को कब तक अपनी उंगलियों पर नचाते रहोगे, अपना कानून चलाते रहोगे, अपनी खुद पसंदी दिखाओगे? उस बाबक ने एक फूल जैसी बीवी अपनाई है, वो नाफरमान है?
हाँ हाँ, अब ये रोया और कावे।
नहीं, इत्तेफाक से ये एक नहीं, मैं भी इस कावे से राजी नहीं हूं। मैं भी कावे को रोया के मुनासिब नहीं समझता, मगर तुम्हारी दलीलों से नहीं, अपनी दलीलों से। मेरा दिल कहता है कि नरगिस ने अपनी जबान खोल दी है, कावे को उसने बता दिया है कि उसका बाप कौन था, उसकी मां कौन थी। कावे तुमसे बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ है।
क्या तुम ये पूरी तहकीक के साथ कह रहे हो?
तहकीक क्या होती है, मैं अंदर ही अंदर सुलगती नफरत की आग की बात कर रहा हूं। उसके बाद तुम अपनी लड़की पर हाथ उठाते हो ताकि कावे के काम को और भी आसान बना दो। आज के इस दौर और जमाने में अगर अपने घोड़े को लात मारो तो गिरेबान पकड़ लेते हैं, उस वक्त तुम उस पर यानी अपनी बिन मां की बच्ची पर हाथ उठाते हो। बस मैं ये नहीं जानता कि कावे का मकसद क्या है। अगर मकसद पैसा है तो उसमें इतनी अक्ल होगी कि वो समझ सके कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और अगर ये मानूं कि ये इश्क है तो फिर मेरा दिल क्या कहता है, या ये कि मैं तुमसे दसवीं बार पूछ रहा हूं कि कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और कावे के मां बाप के बीच अंजाम पाया हो जिसको सिर्फ तुम, नरगिस और तुम्हारी बहन फ्लोर जानती हो और उस बात को मैं नहीं जानता हूं। हेलो, सलाम। हाँ हाँ, अभी आता हूं। खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूं जमानत के सिलसिले में एक दो लोगों से बात करने। खुदा हाफिज।
रोया, रोया जान, क्या खबर है?
कावे काम तलाश करने गया है। शादीशुदा होना जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। उसका गैरतमंद होना मुझे बेहद पसंद है। किसने घर की घंटी बजाई थी?
जनाब समसामी थे।
डैड कमरे में जमकर बैठे हैं कि मुझे बाहर न जाने दें।
वो बाहर इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि अब उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है, कोई काम ही नहीं है ऐसा जिसको अंजाम देने के लिए वो बाहर जाएं। घर में बैठकर खाली अफसोस कर रहे हैं, अपने दिवालिया होने का गम, अपनी बेटी का गम अपने इज्जत खत्म होने का गम मना रहे हैं वो। दुनिया में कोई भी मोहब्बत इस कदर अहमियत नहीं रखती कि माँ बाप का एहतराम खत्म कर दें।
अच्छा, जब बाबा तुमसे शादी कर रहा था तो तुम उस वक्त कहाँ थी कि ये बात उसको बता सको? क्यों बोलो, ये बिस्तर की चादर देख रही हो? देख रही हो? मैंने नाश्ता कर लिया है, शुक्रिया। अब ये ट्रे उठाओ और चली जाओ।
जिस वक्त बाबक मुझसे शादी करना चाहता था और जो बातें तुम अब कह रही हो, उस वक्त कहने के लिए मैं खुद मौजूद नहीं थी। उस वक्त नाहिद खानम नाम की खातून यहां पर हुआ करती थी, और जिन्होंने बाबक को कोने में ले जाकर कहा था, उन्होंने कहा था कि चाहने की बात तो अलग रखो, यहां पर ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं, बेइज्जती करने की भी इजाजत नहीं। और आज यहाँ नाहिद खानम नहीं है, और इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने शोहर की बहन समझूं, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, और इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हारे कल की बाबत फिक्रमंद हूँ। मैं परेशान हूँ कि इज्जत और एहतराम न खत्म हो जाए। मैं खाना इसलिए नहीं लाई हूँ कि तुम खाओ या ना खाओ और मैं ट्रे उठाकर ले जाऊं। मैं महज तुम्हारी माँ का पैगाम तुम तक पहुंचाने आई हूँ।
हेलो
हेलो सारा, मैं घर पर फोन कर रही हूँ मगर कोई उठा नहीं रहा। मैं परेशान हूँ, डैड या मेरी भाभी ने कोई फोन तो नहीं किया था?
नहीं, फोन तो नहीं किया था, बस काव्य का फोन आया था मेरे मोबाइल पर, वो तुमको पूछ रहा था।
डॉक्टर अरसलान काउंटर पर, डॉक्टर अरसलान काउंटर पर।
शुक्रिया। माफ़ करें मोहतरमा, मैं अहमद रज़ा बाबाई के अखराजात के बारे में मालूम करना चाहती थी।
पैसों की फ़हरिस्त अभी तो दी है, आप जल्द से जल्द उसको अदा कर दें।
दे दिया? किसको और कब? मैं अभी पहली मरतबा यहाँ आकर पूछ रही हूँ।
आपको नहीं, उन साहब को दिया जो वहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो आपके भाई हैं, वो वहाँ खड़े हैं।
अच्छा, तो मेरे शोहर के अखराजात की फहरिस्त की सूरत हाल क्या है? आप या आपके मामू को किसी ना किसी हालत में मेरी नजरों के सामने रहना जरूरी है क्या?
मोहतरमा, हम नजर रखे हुए कि हमारा 8 अरब रुपया उड़ ना जाए। हम नजर रखे हुए अगर अस्पताल का खर्चा नहीं दिया गया तो हम जमा कर दें ताकि उसको अस्पताल से बाहर ना निकाल दे। हमारी सारी चीजों पर नजर है, यहां तक कि हम ये भी जानते हैं कि किन के साथ और कहां रहती हो, यहां तक कि तुम क्या खाती हो, इसकी भी हमें खबर है। मोहतरमा, मेरे मामू की सांसें तुम्हारे शोहर की सांस के साथ चल रही है, दोनों की सांसें एक दूसरे से वाबस्ता हैं, चाहे ये बात तुमको अच्छी लगे या ना लगे।
कहाँ जा रहे हो?
क्या है, यहाँ गिरते पड़ते आए हो? किस लिए? इसलिए कि बबाई की बीवी को डरा सकूं? देख रहे हो कि डर गई। अब निकलो यहाँ से। अहमद रजा बाबाई बिस्तर पर हैं और कोमा में है, इसलिए पुलिस ने भी उसके दरवाजे पर एक कुर्सी डाल रखी है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो।
डराने की क्या बात है, हम लोग बच्चे तो नहीं है। आधी रात को गैर मुल्की डॉक्टर का भेज देकर मुल्क से भगा दिया।
ये किसने कहा?
तुम लोगों ने भगा दिया।
किसने कहा ये?
क्या फर्क पड़ता है कि किसने कहा, अहम यह है कि नहीं है। असल में तुमसे क्या मतलब? चलो।
मेरा शौहर बिस्तर पर पड़ा है, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हिलाया जा सके। वो कैसे चला जाएगा? ये सब अफवाह है।
देखते हैं, बाद में पता चलेगा अफवाह है या
वो अपने बिस्तर पर है। निकल जाओ यहाँ से।
हम अपने पैसे को मजबूती से पकड़कर बैठेंगे। हमारा पैसा उस बिस्तर पर है। अगर अफवाह भी हो तो भी शक दूर करना होगा। मैं तो उसके बिस्तर के पास से हिलूंगा भी नहीं।
चलो चलो।
अहमद रजा बाबाई कहाँ है?
ये क्या हरकत है, ये अस्पताल है। जरा आहिस्ता बोलिए।
ये बताओ, तुम कर्जा लेने वालों में से हो?
नहीं तो क्या, बेकार में यहाँ आया हूँ।
तुम्हारा कितना कर्जा है?
जितना दूसरों का है मुझे भी उतना ही चाहिए।
दूसरों के जितना कितना? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूं। मैंने तुमको कर्ज ख्वाहों में कभी नहीं देखा।
रुको, मैं देखता हूं। क्या बिला वजह हंगामा कर रखा है? अहमद रजा बाबाई अपनी जगह से हिला भी नहीं है। सबसे बड़ा कर्ज खा मेरा मामू है। हम यहाँ देखभाल कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ज्यादा शक है, उस जवान को यहाँ रख दो। ये दिन रात पहरा देगा। बाकी लोग निकल जाओ। चलो जनाब, चलो निकलो यहाँ से।
निकलो, चलो।
तुमने बताया नहीं कि किस कदर कर्जा दिया है।
तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो?
अहमद रजा बाबाई के भागने की खबर किसने फैलाई? तुम रुको पुलिस के आने तक। मैं तुमसे हूँ, तुम कर्ज ख्वाहों में से नहीं हो। फिर इस मामले में क्यों कूद रहे हो? क्यों? तुमसे मुखातिब हूँ, तुमसे।
इसको जाने दो कि हंगामा ठंडा हो।
नहीं, ये रुकेगा जब तक पुलिस नहीं आती। हो सकता करिश्मा हो जाए और अफवाह सही साबित हो जाए।
कावे इधर आओ, मुझे तुमसे काम है।
मुझे तुमसे कोई काम नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसे यहां किसने भेजा है। रुको तो जरा।
हमारे साथ होशियारी।
अरे छोड़ दो इसको। तुम लोग, तुम्हें क्या लेना लेना है?
और ले।
कोई मदद को आए।
दादा बनता है।
मत मारो।
कोई आगे नहीं आएगा।
कोई मदद करो। आकर मदद करो। छोड़ दो उसको। मार डाला। अरे
मैंने कहा कोई आगे नहीं आएगा।
अरे मत मारो, कोई मदद करो। मार डाला।
आगे से हमारे साथ होशियारी नहीं चलेगी, समझा?